हमारे मन में कोई खास आई नहीं, ये सुना ऐसी कोई बात आई नहीं।
योग भ्रष्ट का वर्णन है और एक तरफ कहते हैं मेरे भक्त का नाश होता ही नहीं, वो भ्रष्ट होता ही नहीं, इन दोनों में क्या अंतर है?
नहीं, भक्ति में अपने साथ संजीवनी में ये लिखा है कि योग भ्रष्ट होता है, ये प्रसंग है ध्यान योग का। तो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, इनमें हो सकता है, भक्ति योग योग भ्रष्ट नहीं होता। वो योग भ्रष्ट क्यों नहीं होता कि ज्ञान योगी सांख्या नाम कर्म योगी योगी नाम दो निष्ठा है, एक सांख्य निष्ठा है, ये योग निष्ठा है। निष्ठा दो ही वर्ग की है। भागवत में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, तीन योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब यहाँ निष्ठा दो ही बताई, तो भक्ति योग की निष्ठा बताई, सांख्य योग कर्म योग दो प्रकार निष्ठा बताई भगवान ने। तो भगवान को विशेष गौरव नहीं किया है, शरीर का भी इसमें है, दोनों के अंतर्गत आ जाता है। भक्ति है वो योग के अंतर्गत, कर्म योग के अंतर्गत आ जाती है। तो कर्मयोग के अंतर्गत आ जाने से वो अलग नहीं गई, अपने थोड़ा और तरह किया है। अपने ये किया है कि लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, तो ज्ञान योगी सांख्या नाम कर्मयोगी योगी नाम, तो सांख्य योगी वो है, कर्मयोग से कर्मयोग ही है योग निष्ठा बताई, सांख्य योग की ज्ञान योग से निष्ठा बताई। तो ये दो निष्ठा तो है मनुष्य की, और भगवत भक्त होता है उसकी निष्ठा उस खुद की नहीं होती, उसकी निष्ठा भगवान पर होती है। भगवान की मर्जी है मर्जी, भगवान के संग में जाते हैं। तो भक्ति है वो मनुष्य की निष्ठा नहीं है, मनुष्य की निष्ठा वो तो भगवान निष्ठा है, निष्ठा भगवान की है, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो भगवान भगवत निष्ठ होता है, उसका पतन नहीं होता, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट में ध्यान योग बात है, क्योंकि योग भ्रष्ट में बात यह बताई है कि अति ही श्रद्धेयों के तो योगा चलित मानस, योग से मन चलित हुआ, वो चलित होना उससे ही भ्रष्ट होता है। अपने आप योग संसिद्धि हम योग के ऊपर अंत में योग रह गया, कल्याण हो जाएगा। तो योग से चलित मन हो गया वो किस प्रति हो जाता है? तो योग से चलित मना होता है तो मन की प्रधानता वहां रही, तो मन की प्रधानता ध्यान में होती है, ध्यान में मन लगाया जाता है। अरे वो ध्यान भगवान का न हो किसी कारण से चलित मना हो जाए तो योग सिद्ध तो होगी नहीं, फिर किसको प्राप्त होगा? कहते कचिन्नो भ्रष्ट होकर के उसका नाश हो जाता है क्या? तो विराम भगवान ने कहा नाश नहीं होता, पार्थ नहीं हुए नाम मतलब विनाश से उसका विनाश नहीं होता। क्योंकि नहीं कल्याण कष्ट दुर्गति, वो कल्याणकारी कोई दुर्गति में नहीं जाता, तो वो फिर क्या होता है? उसकी दो बात बताई है कि योग साधन करने में प्रवृत्त होने वाले दो होते हैं। एक तो जिनको स्वतः संसार से वैराग्य हो गया, स्वाभाविक ही राग होता ही नहीं, आसक्ति होती ही नहीं, कामना होती ही नहीं, कोई संसार की चाहना रहती ही नहीं, फिर केवल भगवान में लगा है। और एक ऐसा होता है उसने भगवत की महिमा सुनी तो भगवान में लगा, परंतु संसारी भोगों में भी वासना रही उनको रोक करके, उनको त्याग करके भगवान में लगा। तो ऐसा जो योग में लगता है, ध्यान योग करता है, तो उसमें योग चरित मना हो जाता है, तो वो योग व्यस्त होता है। तो उन्होंने दो गतियां बताई योग व्यस्त की। एक तो स्वर्ग में जाकर बहुत वर्षों तक रह करके फिर शुभ श्रीमान धर्म जन्म लेता है, और एक को बताया कि योगिना में वह बोले भूति योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। तो स्वतः वैराग्य है वो अंतकार में किसी कारण से अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो योगियों के कुल में जन्म लेता है। इसको दुर्लभ बता रहा हूँ, योगी जन्म जिसमें ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ बताया है। तो वहाँ वो लगते पूर्व पूर्व ही योग प्राप्त हो जाता है, और वो प्रयत्न यत्न करता है जल्दी सिद्धि हो जाती है। अब जो भोगों की वासना रही थी उस वासना को रोक करके करता है तो उसको फिर अंधादि लोक है शुद्ध, उन लोगों में जाता है। तो श्रुति नाम श्रीमत गांव घर में उसी तरह शास्त्री समा बहुत वर्षों तक स्वर्ग में भोग भोग करके और फिर जन्म लेता है यहाँ पर, तो वो योग भ्रष्ट होता है जिसकी वासना थी। उस वासना के कारण से स्वर्ग आदि में जाना होता है, जिसकी वासना नहीं होती वो स्वर्ग में नहीं जाता, योगियों में जन्म लेता है। ऐसे दो गतियां दो बताई। इसमें भक्ति योग का वर्णन नहीं है, भक्ति योग का योग भ्रष्ट होना नहीं होता।
चरित मना हुआ है वो भगवान का ध्यान करने से भी हुआ है, तो वो ध्यान ही भक्ति योगी नहीं है क्या?
भक्ति योग हो सका है, उन्हें भक्ति योग है ना। भक्ति योग असली किसका नाम है, वो भगवान पर ही भरोसा रखता है। साध्य और साधन भगवान ही है, उसका कोई साधन नहीं है, भगवान पर निर्भर है। जैसे बालक होता है वो अपनी माँ पर निर्भर होता है, उसका खुद का कोई उद्योग नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे भगवान के परायण होता है, भगवान ही परायण केवल होता है, उसका फिर पतन नहीं होता, कोई भ्रष्ट नहीं होता। और भक्ति करता है, भगवान में मन लगाता है, तो वो मन लगाता है, ध्यान करता है, तो ध्यान का भरोसा है ना मन में, वो भरोसा योग से चरित मना होता है, तब योग भ्रष्ट होता है। जिसका मन पर भरोसा नहीं, भरोसा ही भगवान पर, ये केवल निर्भर ये भगवान पर ही, तो कैसे हो, कोई बात है।
साधन और साध्य की भिन्नता है वहाँ भ्रष्ट होता है। साधन और साध्य की भिन्नता है वहाँ भ्रष्ट होता है, की भिन्नता नहीं तो वहाँ भ्रष्ट।
हाँ, भगवान पर ही निर्भर है, आपके अपना अपना कोई उपाय नहीं है। भगवान के शरण होने वालों में भी बढ़िया शरण होने वाला वही होता है कि जो अपनी शक्ति पर उसका विश्वास है ही नहीं, अपने मन पर, इंद्रियों पर, अपने पुरुषार्थ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और सिद्धि चाहता है, परमात्म तत्व की चाहना तो है, परंतु अपने बल पर वो प्राप्त कर ले, ऐसे अपने बल से बिल्कुल निराश हो गया है कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा होता है। वो भगवान पर ही निर्भर होता है, भगवान पर ही निर्भर होता है, वो योग्यस्त नहीं होता। भगवान ने ये कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है, जब तक होश रहे तब तक मेरा चिंतन करा, मेरे भरोसे रहता है, तो मेरे को होश रहा तब तक मैं भी उसका चिंतन करता हूँ। ये सब हम प्रपद जनते हो जाए, मैं हम तो उसका होश रहता है तब भगवान का चिंतन करता है, होश नहीं रहता है तो फिर उसका भगवान चिंतन करते हैं। पाषाण का सरसान अभी जगाम अभिष्टम, सुख काठ की तरह पत्थर की तरह हो जाए ऐसा बेहोश हो जाए तो मैं अभिष्ट में चिंता हूँ, क्योंकि वो होश रहा तब तक मेरा चिंतन रहता रहा, बेहोश हो गया इसी कारण से अभी चिंतन नहीं हुआ, ऐसे समय मैं चिंतन करता हूँ। इस बात की उसका प्रश्न कैसे हो, पतन कैसे हो, ये बात क्षमा करना है ना, क्षमा करना कब होता है जब वो अपराधी अपराध मानता है, अपराधी मानते ही नहीं अपराध तो क्षमा क्यों कर जाना, क्षमा का अधिकारी अपराध मानता है वो ही होता है।
जिसने मेरे साथ अपराध किया है उसने मुझसे क्षमा याचना कर ली है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्षमा करे या प्रतिशोध
ले? प्रतिशोध नहीं, आप भक्ति से आते हैं, कल्याण से आते हैं तो उसका बदला लेने की इच्छा बिल्कुल उठा देनी चाहिए।
आपने फरमाया
था एक तो अपराध करता है और एक जिस पर करता है, ये दो, और एक तीसरा देखता है, ये तीन आदमी की अलग अलग धारणा है। जैसे आपका अपराध किया तो आप क्षमा कर सकते हैं, परंतु दूसरा देखने वाला क्षमा कैसे कर देगा, वो नहीं करेगा ना, वो क्षमा नहीं करेगा। जैसे भगवान क्षमा जल्दी नहीं करते हैं, भक्त के कारण से भक्त क्षमा कर देता है तो भगवान परवश होकर के चुप हो जाते हैं, नहीं तो भगवान क्षमा नहीं करते। अब तीसरा आदमी की एक क्षमा करने की बात है नहीं, तीसरा आदमी क्षमा कैसे करे, न्याय विरुद्ध बात है, उसको दंड देंगे, राजा का काम है, राजा है तो दंड देगा, वो क्षमा कैसे करेगा। तीन बातों में तीन धारणा अलग अलग होती है, जिस पर अत्याचार होता है वो तो मान लेता है मेरा कोई पाप है, इस बात से इसका कोई दोष है ही नहीं, मेरा इसने बिगाड़ किया है तो मेरा बिगाड़ होने वाला था वही हुआ है, दूसरा मेरा बिगाड़ कर सकता नहीं, इस बात से मेरे दोष का फल है तो इनका अपराध है ही नहीं, कैसे क्षमा करे क्या करे, वो अपराध मान गए नहीं। और अपराध करने वाला वो क्रूर आदमी होता है, वो कहते मैं ठीक करता हूँ, और तीसरा आदमी है वो देखता है अपराध कर रहा है ये, तो तीसरा आदमी के लिए क्षमा करने की बात नहीं है। अभी यहाँ इतिहास की बात मत छेड़ो, दूसरा प्रश्न मत छेड़ो, यहाँ तो केवल अपने खुद की जो कोई जिज्ञासा हो, खुद की अर्चन हो, वही बात छेड़ो। जैसे पहले योग की बात छेड़ी तो वह बात है, उसी में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करो, ये दूसरा प्रसंगांतर नहीं करे। और अभी आपके कर से मैंने कह दिया तो उसमें अब वो घोड़े कौन से, तो किसी ने रूपों से अपने घोड़े जारे बनाए, नारी बात कही तो वो अलग होती है। अब ये देखो, जैसे रामायण में आता है तो रामायण में भगवान रावण अति वृद्ध रघुवीरा, भगवान के पास रथ नहीं है, वो तपस्वी थे और अर्जुन रथ पर है, तो रावण तो विभीषण को बड़ी पीड़ा हुई कि क्या करूंगा, रथ नहीं है हमारे भगवान के पास में, तो भक्तों की इच्छा होती है वो पूरी होती है, तो वहां पर माथ लेने रस लेकर आ गया, वो इंद्र का साथ आ गया, रथ आ गया वहां, तो रथ हो रहे हो वहाँ पर रथ नहीं है, ये बात सुनकर भगवान ने कही बात पहले कि रावण और भाई विभीषण जिससे विजय होती है वो दूसरा होता है, इस रथ से विजय नहीं होती है। वहाँ रथ बताया है, वहाँ पर घोड़े तीन बताए हैं, क्या छुपाई, तीन घोड़े बताए वहाँ, चार घोड़ों का रथ है उसमें तीन बताया है, क्षमा बल विवेक दम पर घोड़ा है, घोड़ा के चार और मेरी लगाम बताइए तीन, क्या बताया है?
सत्य क्षमा समता है जोरे।
क्या कहा? सत्य क्षमा समता, ये तीन लगाम बताइए। घोड़े चार लगाम तीन, लगाम चार होने चाहिए घोड़ों के। तो उसने बताया कि जो जो घोड़े बीच में होते हैं उन दोनों की एक और एक लगाम होती है, और प्रसाद जो घोड़े होते हैं उनकी दो लगाम अलग अलग होती है। इधर चलाना होता है तो इधर घोड़े को इस चलाएंगे, इधर चलाएंगे तो चलाएंगे। बीच वालों को कोई जोर से पंचायत नहीं है, ना इधर चलाएंगे, कुछ चलता है इधर चलाएंगे उधर चलेगा, तो उसमें एक ही लगाम होती है दोनों की, इसमें तीन लगाम है। तो वहाँ ये रथ बताया है उसके सत्य क्षमा क्या क्या घोड़ा समता घोड़ा बताया, नहीं घोड़ों का नाम बल विवेक दामाद पर हित ये घोड़ा बताया चार। तो ऐसे घोड़ों के तीन चार नाम बताए, इस तरह से भगवान के चार घोड़े हैं, ऐसा कोई रूपक बनावे तो उनके नाम अलग कर देंगे, वो रूपक रहेगा। रूपक की बात है, रूपक की बात दूसरी होती है, रूपक अलंकार होता है एक, तो उसमें घोड़ा ही घोड़ों की जगह ये चार मानना चाहिए ऐसा रूपक बनाता है, तो वो घोड़ों का नाम दूसरा लिख देता है, वो घोड़े नहीं है वो रूपक में है। जैसे ये रूपक बताया भगवान ने तो रूपक का रस बताया है, तो इस रूपक में रूपक है ये कुरार लगाम सारथीर रथीर रथ सब रूपक है। तो रूपक क्या है? भक्ति है, भक्ति का वर्णन है, तो भक्ति में ये सामग्री होती है उसको बताया। तो यहाँ पर ये घोड़े घोड़े नहीं है। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 जुलाई 1990 को प्रातः 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम।